हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद सातवां अध्याय, जिसका शीर्षक है द्रोण पुत्र को दंड। इस अध्याय में हमने द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के क्रोध में आकर जो उसने घृणित कार्य किए उनके विषय में पढ़ा। परंतु भक्तों, अश्वत्थामा की जीवन शैली को यदि हम देखें, वास्तव में यह जो श्रीमद् भागवतम में जो जो बातें लिखी हुई हैं या महाभारत में जो जो प्रसंग और जो जो कैरेक्टर्स हैं उनके विषय में पढ़कर केवल मनोरंजन प्राप्त करने के लिए नहीं पढ़ना है, बल्कि उनके जीवन से हम बहुत सारी सीख ले सकते हैं। अश्वत्थामा के जीवन से भी हमें बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त होती है। आज हम उसके विषय में चर्चा करेंगे। अश्वत्थामा जब पैदा हुआ था, जब छोटा था, मतलब अभी थोड़ा सा बड़ा हुआ था, वो अपने मित्रों के साथ बाहर खेल रहा था, तो उसके एक मित्र ने उसे कहा कि अभी अभी मैं दूध पीकर आया हूँ, मेरी मैया ने मुझे दूध पिलाया, दूध इतना अच्छा है, इतना स्वादिष्ट था कि आनंद आ गया। अश्वत्थामा जो कि द्रोणाचार्य का पुत्र था और द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे, उनके पास इतना धन नहीं था कि वो अश्वत्थामा को दूध पिला सके। और अश्वत्थामा घर पे गया और अपनी माता कृपी से पूछा, माँ दूध कैसा होता है? तब उसकी माता ने उसे कहा, दूध देखते मैं दिखाती हूँ आपको। तो पानी के अंदर वो सफ़ेद कलर का आटा डाला, थोड़ी सी चीनी डाली और उसको शेक करके मिक्स करके उसको पिलाया। बोला, देखो अश्वत्थामा ऐसा होता है दूध। और ऐसा कहते हुए कृपी को बहुत दुख हो रहा था। जब द्रोणाचार्य ने ये देखा कि मेरी संतान को मैं दूध तक नहीं दे सकता, तो उसे बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो सोच रहा था कि ऐसी ब्राह्मण वृत्ति में रहकर क्या फायदा, क्योंकि उस समय तक वो ब्राह्मण वृत्ति को पालन कर रहे थे। और फिर उससे याद आया कि गुरुकुल में मेरा एक मित्र था द्रौपद, जो मेरा बहुत ही गहरा मित्र था, और उसने मुझे कहा था कि द्रोण, जब भी तुम्हें किसी आवश्यकता पड़ेगी किसी चीज की, तो मेरे पास आ जाना, मेरा राज्य तुम्हारा राज्य है, तो तुम जो चाहिए होगा, मतलब मैं तुम्हें आधा राज तक दे दूंगा। जब उसे ये याद आया तो वो द्रौपद के पास गए, मगर द्रौपद ने उसे धिक्कार के निकाल दिया। बोला, बचपन में कही हुई बातों को तुम अभी तक याद किए हुए हो, निकल जाओ यहाँ से, अगर ब्राह्मण बनकर आए हो तो मैं तुम्हें गाय दान दे दूंगा, लेकिन यदि तुम मित्र बनकर मुझसे मांगने के लिए आए हो तो तुम ये बेवकूफी मत करो, क्योंकि कोई क्षत्रिय एक भिखारी ब्राह्मण का मित्र नहीं हो सकता। यदि तुम्हें अपनी इच्छा पूरी करनी है तो भीख मांगो मुझसे, मैं आपको दे दूंगा। जब द्रोणाचार्य का इतना अपमान हुआ तो वो वापिस से घर चला गया और उसने सोचा कि मुझे कुछ और करना चाहिए। ब्राह्मण को समस्त वर्णाश्रम का ज्ञान होता है और कुछ ब्राह्मणों को शास्त्र ज्ञान भी होता है, परंतु ज्यादातर ब्राह्मण क्षत्र ज्ञान का उपयोग नहीं करते हैं युद्ध में। परंतु क्योंकि अब द्रोणाचार्य के पास बहुत ही विषम स्थिति थी, फिर उसने निर्णय किया कि मैं अपने शास्त्र का ज्ञान की शिक्षा दूंगा क्षत्रियों को। और एक समय युधिष्ठिर इत्यादि सारे भाई वन में थे, वहां पर उन्होंने देखा द्रोणाचार्य की वो एक कार्य ऐसा कर रहे थे, उसकी बुद्धि उसके ज्ञान के विषय में उसको जब युधिष्ठिर ने जब देखा तो जाके पितामह को बताया कि द्रोणाचार्य अत्यंत ही बुद्धिमान है, बहुत ज्यादा इसको ज्ञान है, हाँ हम इनसे शिक्षा लेंगे। तो भीष्म पितामह उनको जानते थे क्योंकि वो भी परशुराम के ही शिष्य थे। तो हस्तिनापुर के बाहर एक गांव था, वहां पर उनको एक बहुत बड़ा गुरुकुल खोल के दिया और जितने भी राजा थे उनके पुत्र वहां पर शिक्षा लेते थे, कौरव पांडवों ने वहीं पर शिक्षा दी। कुछ लोग कहते हैं दिल्ली के बराबर में जो गुड़गांव है, क्योंकि वहां पर उसको गुरुगांव कहते थे, जहां पर बहुत बहुत सारे राजाओं के राजकुमार शिक्षा लेने आते थे, तो उस जगह का नाम ही गुरुगांव हो गया था। तो अभी जो गुड़गांव है, कुछ लोग बोलते हैं ये वही स्थान है जहां पर कौरव और पांडव ने शिक्षा ली थी। अश्वत्थामा भी वहीं पर शिक्षा लेता था। अश्वत्थामा की दोनों से मित्रता थी, कौरवों से भी और पांडवों से भी। अश्वत्थामा उस समय उस सभा में उपस्थित नहीं था जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था। फिर जब वो आया था, मैं बाद में जब उसे पता चला था, उसे बहुत क्रोध आया था और उसने बहुत दुर्योधन को, दुशासन को बुरा भला कहा था। परंतु 13 साल के बाद, क्योंकि जब वो अज्ञातवास पे चले गए और उसके बाद वनवास के बाद अज्ञातवास 13 साल बीत गए, फिर जब युद्ध हुआ तो युद्ध में क्योंकि द्रोणाचार्य कौरवों के साइड से लड़ाई कर रहे थे, इसलिए वो स्वाभाविक अपने पिता के साथ युद्ध में शामिल हो गया। वो बहुत ही भीषण युद्ध करता, उसने अपनी युद्ध कला में बहुत ही अच्छा दिखाया, प्रदर्शन किया। अब युद्ध की उस समय जो युद्ध हुआ था उसके विषय में हम थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जो पहले 10 दिन थे, उन 10 दिनों में भीष्म पितामह सेनापति थे। वो महाभारत में भीष्म प्रो के नाम से आता है और उसी में भगवत गीता भी आती है, 23 से 40 अध्याय तक। अगले 5 दिन तक द्रोणाचार्य सेनापति बने और उस पर्व को द्रोण पर्व कहा जाता है, यानी युद्ध के 11वें से 15वें दिन तक, वो कौन सा है, द्रोण पर्व। उसके बाद दो दिन के लिए कर्ण सेनापति बने, यानी 16 से 17 तक। और उसके बाद 1 दिन के लिए शल्य सेनापति बने, उसके बाद कर्ण पर्व, उसके बाद शल्य पर्व, और फिर अंत में युद्ध का जो अंतिम दिन था, 18वां दिन, उसमें अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया और उस पर्व का नाम है शौप्तिक पर्व। अभी हम देखें कि जब भीष्म पितामह को सेनापति बनाया गया तो भीष्म पर्व, फिर द्रोण पर्व, कर्ण पर्व, शल्य पर्व, लेकिन जब अश्वत्थामा को सेनापति बनाया गया तो उस पर्व का नाम अश्वत्थामा के नाम से नहीं रखा गया, क्योंकि उसने इतना घिनौना कार्य किया था कि इस पर्व का नाम उस पर्व के नाम पर ना रख के शौप्तिक पर्व कहा लिखा। क्योंकि पांडव के सेनापति दृष्टद्युम्न थे और उनके नाम पर के कोई भी पर्व नहीं था, पांडवों के नाम के ऊपर कोई भी पर्व नहीं था। ये पर्व उस तरह से रखे गए वेदव्यास जी ने कि कौरवों के सेनापति को वध करके जिस प्रकार से ये कार्य किया जाता, उस हिसाब से जिस जिसका वध होता उसी उसी का पर्व पे नाम आता। अभी लेकिन हम देखेंगे इस पर्व का नाम क्या है, शौप्तिक पर्व। शौप्तिक का मतलब होता है सोना। इसको आज हम बहुत ही डिटेल से थोड़ा पढ़ने का प्रयास करेंगे। हम इससे पहले द्रोण पर्व को थोड़ा सा संक्षिप्त में देखते हैं। पहले जब भीष्म पर्व के अंत में, यानी भीष्म कितने टाइम तक थे, 10 दिन तक, उसके अंत में जब भीष्म की मृत्यु हुई अर्जुन और शिखंडी के द्वारा, तो द्रोणाचार्य ने उस समय अश्वत्थामा से कहा, जब अर्जुन और भीष्म पितामह का युद्ध हो रहा था, शिखंडी भी उनके साथ था, तो द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, अभी ऐसा समय है कि वरिष्ठों की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम जाओ और भीष्म की रक्षा करो। अर्जुन को भीष्म का वध करने नहीं देना, पर अर्जुन किसी तरह से शिखंडी और कृष्ण की सहायता से भीष्म को तीरों के बिस्तर पर गिरा दिया। दुर्योधन द्रोणाचार्य को सेना का सेनापति नियुक्त किया और उनसे कहा कि आप अब युधिष्ठिर को मारो मत, उसको जिंदा गिरफ्तार करो। द्रोणाचार्य ने कहा क्यों? क्योंकि यदि युद्ध में द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को मार दिया जाएगा फिर तो युद्ध ही खत्म हो जाएगा। परंतु दुर्योधन ने कहा कि 10 दिन तक मैंने इस युद्ध को देखा है और मुझे ये समझ में आया है कि इन पांडवों को युद्ध में जीता नहीं जा सकता। तो आप, द्रोणाचार्य को बोला, अब आप ऐसा करो, इसको बंदी बना के गिरफ्तार करके दो मुझे। ये बंदी बन के जब आ जाएगा तो मैं फिर से इसके साथ जुआ खेलूंगा और द्यूत क्रीड़ा में इसको पराजित करूंगा और इनको फिर से 13 साल के लिए वनवास में भेज दूंगा। द्रोणाचार्य ने ऐसे सर हिलाया और सोचने लगा, अरे दुर्योधन, तुम कभी नहीं सुधरोगे। अब 11वें दिन जब द्रोणाचार्य उस सेना के सेनापति थे, बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। लेकिन अब इस समय क्या हुआ कि द्रोणाचार्य ने इतना खतरनाक युद्ध किया, यहाँ तक कि बड़े भैया युधिष्ठिर को पकड़ने वाले थे, उनका कवच तोड़ दिया, उनका रथ तोड़ दिया, उनका धनुष है वो गिरा दिया, परंतु अंतिम समय में अर्जुन ने आकर युधिष्ठिर को बचा लिया। फिर नेक्स्ट दिन जो था 12वां दिन, उस दिन द्रोणाचार्य ने कहा दुर्योधन को कि मैं युधिष्ठिर को बंदी तब तक नहीं बना सकता जब तक अर्जुन उसके साथ है। तो यदि अर्जुन को आप हटाओगे वहां से तो मैं उसको बंदी बना सकूंगा। तो फिर नेक्स्ट डे पूरा प्रयास किया, अब लेकिन उस दिन भी युधिष्ठिर को भीम ने और सब जितने भी दृष्टद्युम्न इत्यादि थे उन्होंने बचा लिया। हालांकि द्रोणाचार्य बहुत ही निष्ठुरता के साथ बहुत ही भीषण युद्ध कर रहे थे, लेकिन दुर्योधन गया अश्वत्थामा के पास और उसको बोला, देखो अश्वत्थामा, मेरा कितना दुर्भाग्य है कि मेरे सारे सेनापति पांडवों से प्रेम करते हैं, मुझसे प्रेम नहीं करते हैं। अश्वत्थामा ने कहा, हे दुर्योधन, ये सत्य है कि मैं और मेरे पिता दोनों ही पांडवों से बहुत बहुत स्नेह करते हैं, क्योंकि वो इतने सत्कुणी हैं कि उनसे कौन स्नेह नहीं करेगा, परंतु युद्ध में आकर सारा स्नेह समाप्त हो जाता है। मैं देख रहा हूं कि मेरे पिता पूरे सामर्थ्य के साथ युद्ध कर रहे हैं, पर तुम इतने कृतज्ञ हो, तुम इतने अपने अहंकार में इतने अंधे हो गए हो कि आपको नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको केवल अपने स्वार्थ के अलावा और कुछ नहीं दिखता। तो अश्वत्थामा इतने बहादुर थे कि अपनी बात कहने में दुर्योधन को जरा भी नहीं डरे। 15वें दिन अश्वत्थामा युद्ध कर रहे थे तो घायल हो गए, वो चले जाते हैं। और अब द्रोणाचार्य इतना भयंकर युद्ध करते हैं, इतना भयंकर युद्ध करते हैं, क्योंकि दुर्योधन उसे बार बार पिंच कर रहे होते हैं कि आप है ना सही युद्ध नहीं कर रहे हो, आप पांडवों का पक्ष ले रहे हो, लेकिन ये सुन सुनकर वो इतने बेजार हो जाते हैं, इतने क्रोधित हो जाते हैं, बहुत बहुत युद्ध करते हैं और बहुत सारे सैनिकों की हत्या, ऐसे लग रहा था जैसे वो प्रलय की अग्नि वाले बाण फेंक रहे हैं। तो उस समय कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि बड़े भैया आपको कुछ करना पड़ेगा, वरना द्रोणाचार्य तो आज युद्ध समाप्त कर देंगे। तो जिस समय युद्ध शुरू हुआ था उस समय 2 बार युद्ध रुका था। एक तो जब अर्जुन युद्ध में आया और कृष्ण को कहा मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, और उस समय अर्जुन ने कहा कृष्ण को, न योत्से इति गोविंद उक्त्वा तुष्णीं भगवः, ऐसा कहकर वो अपने रथ पर बैठ गए थे। तो युद्ध रुक गया था और अंत में जब श्रीमद् भगवद गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई, 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 78 में, अर्जुन तैयार हो गया युद्ध करने के लिए और भगवान को कहा कि अपि नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तत्प्रसादात्मया च्युत, अब मेरा मोह समाप्त तो हो गया है आपकी कृपा से, मैंने अपनी स्मरण शक्ति वापस से हासिल कर ली है, अब मैं वही करूंगा जैसा आप कहोगे। मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने के लिए उपस्थित हूँ। उस समय युद्ध पुनः स्टार्ट होने वाला था, परंतु उस समय क्या हुआ, युधिष्ठिर अपने रथ से नीचे उतरे। न केवल रथ से नीचे उतरे बल्कि अपना धनुष बाण भी नीचे रख दिया, अपना कवच भी उतार के रख दिया। कौरवों ने जब इसको देखा तभी वो हंसने लगे, सब उनके ऊपर मजाक उड़ाने लगे कि देखो कायर डर गया, अभी वो हमसे संधि करने के लिए आ रहा है। युधिष्ठिर ने किसी की नहीं सुनी और वो सीधा गए कौरवों के दल में। जो वरिष्ठ जन है उनको प्रणाम किया और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य इत्यादि को हाथ जोड़कर उनसे बड़े स्नेह से पूछा और कहा, क्योंकि आप तो युद्ध में अत्यंत ही निपुण हो, आप सबको कोई नहीं हरा सकता। पितामह आपको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, द्रोणाचार्य आप तो हमारे गुरु हो, हम भला आपको कैसे हरा सकते हैं जब तक आप स्वयं हमें ना बताएं कि आप कैसे हारेंगे। तब पितामह भीष्म ने बताया कि जब तक कोई स्त्री मेरे सामने नहीं आएगी तब तक मेरे हथियार नहीं रुकेंगे। और द्रोणाचार्य ने कहा, जब तक हथियार मेरे हाथ में है तब तक तो मुझे कोई नहीं हरा सकता, परंतु यदि कोई विश्वास पात्र मुझे कोई अत्यंत ही दुखद समाचार सुनाता है तो उस दुखद समाचार को सुनकर यदि मैंने अपना हथियार नीचे रख दिया तो आप मुझे हरा सकते हो। तो कृष्ण याद कराए हैं युधिष्ठिर महाराज को कि आप कोई ऐसा दुखद संदेश जो है वो द्रोणाचार्य को बताओ, आप उन्हें कहो कि अश्वत्थामा का वध हो गया है। तो कृष्ण के रथ पे, क्योंकि अर्जुन बैठे हुए थे, अर्जुन ने भगवान को कहा, हे केशव ये कैसे संभव है कि हम अपने गुरु से झूठ बोलें। तो भीम उसी समय वहां पर उपस्थित हो गया क्योंकि देखा कि मीटिंग हो रही है। भीम ने तुरंत देखा कि मल्ल राजा, उसके हाथी, उसका नाम भी अश्वत्थामा था, तो डायरेक्ट से गया जोर से अपनी गदा के एक ही वार से उस हाथी को मार डाला और भीम से जोर जोर से चिल्लाने लगा, मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। द्रोणाचार्य ने जब ये सुना तो बहुत ज्यादा भयभीत हो गया, उसके चरण ऐसे हिलने लगे, लेकिन फिर भी वो ये सोच रहा था कि भीम हंसी मजाक में कुछ भी बोल सकता है, हो सकता है ये ऐसे ही बोल रहा हो। वो फिर भी युद्ध कर रहे थे, अब टेंशन में तो आ गए थे लेकिन फिर भी इतनी टेंशन हो रही थी उसको, युद्ध नहीं छोड़ रहा था। और इस टेंशन में वो दिव्य अस्त्र चलाने शुरू कर दिए। अब जब युद्ध नीति स्टार्ट की थी, जब उन्होंने युद्ध के नियम बनाए थे, तब दोनों सेनाओं ने ये कहा था, कौरवों ने कहा था कि नियम का पालन होगा। युधिष्ठिर और दृष्टद्युम्न ने कहा, दृष्टद्युम्न क्योंकि सेनापति थे, उन्होंने कहा था कि हम नियम का पालन तब तक करेंगे जब तक कि आपके सेना के सेनापति नियम का पालन करेंगे। अगर आपके सेनापतियों ने नियम का पालन नहीं किया तो फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, हमारे सेनापति भी नियम का उल्लंघन करेंगे। वास्तव में भक्तों, ये जो युद्ध होता है ना क्षत्रियों में, वो एक स्पोर्ट्स के समान होता है। सब अपनी अपनी प्रतिभा दिखाते हैं, कुछ नियमों का पालन करना होता है। जैसे हम यहाँ पर भी देखते हैं क्रिकेट का मैच होता है तो उसमें एक नियम होता है, ऐसा नहीं होता है कि बॉलर जोर से लेकर बॉल को ऐसे से दौड़ दौड़ के आए और बैट्समैन के मुंह पे आके मार डाले, या बैट्समैन अगर देख रहा है कि बॉलर बार बार ना इतने सारे बॉल फेंक रहा है बहुत जोर जोर से, तो आके जोर से उसको अपने बैट से आके उसको ना जोर से मार डाले, ऐसा नहीं होता, क्योंकि इस तरह तो फिर खेल होगा ही नहीं। तो उसी तरह से इस युद्ध में भी ये नियम था कि दिव्य अस्त्र साधारण प्राणियों को, साधारण जो सैनिक हैं उनको नहीं मारेंगे। जो दिव्य अस्त्र हैं वो जो बड़े बड़े महान योद्धा हैं उनके साथ युद्ध दिव्य अस्त्रों के साथ होगा। तो जब द्रोणाचार्य युद्ध में साधारण सैनिकों पर दिव्य अस्त्रों से वार कर रहे थे, उसी समय आकाश में द्रोणाचार्य के पिता भरद्वाज मुनि और दूसरे अन्य ऋषि मुनि आए और कहने लगे, हे द्रोण, तुम ये क्या कर रहे हो? ये तो बहुत ही बड़ा पाप है। देवी अस्त्र तुम इन साधारण सैनिकों के ऊपर क्यों मार रहे हो उनको? अभी तुम्हारा समय आ गया है, तुम्हारा जीवन समाप्त होने वाला है, इसीलिए तुम इतना बड़ा अत्याचार कर रहे हो। तो यहाँ पर सिचुएशन क्या है कि एक तो दुर्योधन हमेशा उनको कोस रहे थे कि आप युद्ध सही नहीं कर रहे हो, आप युद्ध सही नहीं कर रहे हो, आप उनका पक्ष ले रहे हो। दूसरा, अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार उन्हें मिला, उसके कारण उनका मन विचलित था। तीसरा, ऋषि मुनियों ने डांटा तो भी उनका मन बहुत विचलित हो गया। और चौथा, जब वो युद्ध कर रहे थे अभी और उसको उनको हथियार चलाने थे, तो उनके तिरकश में तीर खत्म हो गए थे। अब उनको ये वरदान था कि आपके तीरकश में, जहाँ पर तीर रखते हैं, वहां पर तीर कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन अब क्योंकि तीर भी खत्म हो गए, तो ये भी अपशगुन था, तो इसलिए बहुत ज्यादा परेशान हो गया था वो। उस समय उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। इतने देखा सामने युधिष्ठिर महाराज आ रहे थे। युधिष्ठिर महाराज से पूछा कि क्या वाकई में भीम ने अश्वत्थामा को मारा है? तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा, अश्वत्थामा हतो हते नरोवा कुंजरोवा। नरोवा नर है या कुंजरोवा यानी हाथी है, ये मुझे नहीं खबर, लेकिन अश्वत्थामा हतो हते, अश्वत्थामा मारा गया है। तो यानी कि यहाँ पर ये बात समझने की है कि युधिष्ठिर महाराज ने पूरा झूठ नहीं बोला, सही बोला कि अश्वत्थामा मारा गया है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा, क्या किया? जैसे ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा अश्वत्थामा हतो हते, तो भगवान श्री कृष्ण ने इतना जोर से अपना पंचजन्य शंख बजाया कि द्रोणाचार्य को ये बात सुनने में आई नहीं, नरोवा कुंजरोवा ये बात सुनी नहीं उन्होंने। और अश्वत्थामा हतो हते जैसे ही बड़े भैया के मुंह से उन्होंने सुना, तो वो बहुत ज्यादा हताश हो गए। फिर उनको बहुत ज्यादा दुख होने लगा, रथ पर बैठ जाते हैं और इस दुख के कारण वो जोर से कहने लगे, हे दुर्योधन, मैं अभी युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध से निवृत्त हो रहा हूँ और आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गए। तो वहां पर जितने भी ऋषि मुनि जो के नभ में खड़े थे आकाश में, जो उनको अभी बोलने आए थे, उन्होंने देखा कि उनके शरीर से उसी समय आत्मा निकल गई, क्योंकि वो इतने ज्यादा दुखी हो गए थे अपने पुत्र के मृत्यु के विषय में सुनकर। फिर दृष्टद्युम्न ने जब देखा कि ये बैठा हुआ है, लड़ाई नहीं कर रहा है, फौरन से तलवार निकाली और जोर से भाग भाग के उसके सामने आया, उनके बालों को पकड़ा और अर्जुन चीख रहा था, रुको रुको दृष्टद्युम्न, तो उसको नहीं मारना है क्योंकि गुरु महाराज बैठे हुए हैं, वो युद्ध नहीं करे। वास्तव में भक्तों, पांडवों की योजना नहीं थी कि द्रोणाचार्य का वध हो। उनकी योजना क्या थी कि द्रोणाचार्य युद्ध ना करें, क्योंकि वो इतना भयंकर युद्ध कर रहे थे, सारी सेना मर रही थी, सारे सेनापतियों का वध हो रहा था। तो उनका ये उन्होंने जब कृष्ण ने जब ये योजना बताई थी कि हम ऐसे करेंगे, अश्वत्थामा के विषय में मृत्यु का समाचार देंगे, तो भी उन्होंने, पांडवों ने, अर्जुन ने और युधिष्ठिर ने यही सोचा था कि उनको केवल युद्ध से रोकना है। पांडवों की कोई इच्छा नहीं थी कि द्रोणाचार्य का वध हो, वो चाहते थे कि द्रोणाचार्य को कैद कर देंगे और उसके बाद युद्ध की समाप्ति के बाद उन्हें छोड़ देंगे। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा फिर वो कुछ भी हमें नहीं करेंगे। तो सब, लेकिन उस समय दृष्टद्युम्न इतना क्रोध में तलवार लेकर आया और शिखा से पकड़ कर उनका सर काट दिया और सर काट दिया। तो उस समय सारे लोग बहुत विचलित हो गए, सब दृष्टद्युम्न से बहुत ज्यादा क्रोधित हो गए। दृष्टद्युम्न को बोलने लगे, तुम कितना क्रूर व्यक्ति हो, तुमने अपने गुरु महाराज जिससे इसको उनको इतना बेदर्दी से और इतना अन्याय से तुमने मारा, वो युद्ध भी नहीं कर रहे थे, उनके हाथ में हथियार भी नहीं था। तब दृष्टद्युम्न ने बड़े गर्व से कहा कि मेरे जीवन का लक्ष्य था, मेरा जन्म हुआ था उनको मारने के लिए, तो भले कोई भी अवस्था है मैंने उनको मार डालिया। तब अर्जुन ने और युधिष्ठिर महाराज ने भी दुष्टद्युम्न को बहुत बहुत धिक्कारा, उनको बहुत दुख हो रहा था। अर्जुन बहुत ज्यादा स्नेह करते थे अपने गुरु द्रोणाचार्य से, परंतु उस समय भीमसेन ने कहा कि ये कौन सा ब्राह्मण था, ये ब्राह्मण कहलाने के योग्य नहीं था, अच्छा है मारा गया। तो अर्जुन शांत हो गए क्योंकि कृष्ण उनके साथ थे और कृष्ण कुछ बोल नहीं रहे थे, तो अर्जुन भी चुप हो गए। लेकिन उस समय सात्यकी ने जब देखा तो सात्यकी ने बोला, ये कितना बेरहम है दृष्टद्युम्न, एक तो अपने गुरु को इस तरह से मारा है और दूसरा ये इतने फकर से बोल भी रहा है, दूसरों को कोस रहा है। सात्यकी भी बहुत वीर था, युद्ध में उसने बहुत ज्यादा पराक्रम दिखाया था। जब जयद्रथ की मृत्यु हुई थी ना, उस समय सात्यकी ने बहुत ही भीषण युद्ध किया था, तो सात्यकी बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया और वो दृष्टद्युम्न को मारने के लिए आ गया। उसने अपने हथियार निकाले और दृष्टद्युम्न के ऊपर आक्रमण, यानी पांडव का युद्ध पांडव के साथ। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि द्रोणाचार्य की जो अभी जो उनका वध हुआ था, उसकी पांडवों ने कोई योजना नहीं बनाई थी। जिस तरह अभिमन्यु को मारने के लिए योजना बनाई गई थी, अभिमन्यु जब चक्रव्यूह को तोड़ता हुआ आगे जा रहा था तो सारे कौरवों ने मिलकर ये योजना बनाई थी कि जब वो अंदर आएगा तो सातों सात सात महारथी मिलकर उस अभिमन्यु एक अकेले अभिमन्यु की जान ले लेंगे। वो एक हत्या थी, परंतु यहाँ पर ये जो सिचुएशन ऐसी थी कि वो पांडव सब दुखी थे इस बात से कि किसी ने कोई योजना नहीं बनाई थी, और दृष्टद्युम्न ने क्योंकि उसका गर्म खून था और उसका जन्म ही हुआ इसलिए था कि वो द्रोणाचार्य की मृत्यु करें, तो उसके कारण ये कोई षड्यंत्र नहीं था, इसको थोड़ी सी बेईमानी कह सकते हैं। और वो भी किसने कि वो अपने योद्धाओं को मरता हुआ नहीं देख सकते। तो यहाँ पर एक बात समझने की है, सीख क्या मिलती है कि हर समय झूठ बोलना गलत नहीं होता। जब आप यहाँ पर देखा जाए तो पांडवों ने सबने मिलकर इस हत्या का विरुद्ध किया था, भले ही नियम पहले किसने तोड़े थे, कौरवों ने नियम तोड़े थे, वो दिव्य अस्त्र चला रहे थे द्रोणाचार्य, और इससे पहले ही उन्होंने बहुत ही बेदर्दी से अभिमन्यु की हत्या की थी। लेकिन अगर तुलना की जाए तो बहुत सारे दैवीय लक्षण से ऐसा लग रहा था, जैसे तीर खत्म हो जाना और है ना सारे ऋषि मुनियों ने जो उनको बहुत ज्यादा धिक्कारा था, तो ये लक्षण ऐसे थे। और सबसे बड़ी बात कि उन्होंने देखा था कि उन्होंने पहले से ही शरीर भी त्याग दिया था, भगवान की इच्छा थी इसीलिए पांडवों ने झूठ बोला। साधारणतया झूठ बोलना गलत होता है, परंतु हर परिस्थिति में सत्य और असत्य की परिभाषा बदल जाती है। जैसे अगर किसी के घर पे कोई चोर आ जाता है और पूछता है कि आपका धन कहाँ रखा हुआ है, तो वो झूठ बोलेंगे या सत्य बोलेंगे? अगर कोई डकैत गुंडे किसी के घर पे आ जाए और पूछे कि इस घर का मालिक कहाँ है, बताओ मुझे उसको मारना है, तो क्या हम बता देंगे कि हाँ ये पलंग के नीचे छुपा हुआ, इसको मार डालो, या वो साइड वाले घर में गया? तो इसका मतलब होता है देश काल और परिस्थिति के अनुसार हम जो कोई कार्य करते हैं उसी के अनुसार वो सत्य है या असत्य है उसकी परिभाषा होती है। जैसे अगर कोई सैनिक किसी गुनाहगार को मारता है तो वो उसका गुनाह नहीं होता, उसकी हत्या नहीं होती, बल्कि उसका कर्तव्य होता है। उसी तरह से हमारे घर पे अगर कोई ऐसा कोई किसी को मार रहा होता है, किसी की हत्या कर रहा होता है, अगर पीछे से हम उसका वार करते हैं तो वो केवल अपने बचाव के लिए ही उसको मारा है। तो गुस्से में, नफरत में, संरक्षण में या युद्ध में देशकाल पात्रता के अनुसार जो जो कार्य होता है उस परिस्थिति के उस अनुसार उसको तोला जाता है। सबसे बड़ी बात ये है कि जो भगवान कहते हैं वही परम सत्य है, क्योंकि भगवान सबके हित चिंतक हैं। अब इस संसार में जो हमारे नीति और अनीति, जो सत्य और असत्य के जो नियम बनाए गए हैं वो कैसे हैं, टॉर्च के समय, क्योंकि जब बहुत ज्यादा अंधेरा होता है तो हमें टॉर्च की आवश्यकता होती है जिससे हमें कुछ दिख सके। लेकिन भगवान की आज्ञा है वो है सूर्य के समान। जब सूर्य चमक रहा होता है उस समय टॉर्च की कोई आवश्यकता नहीं होती है। यानी भगवान के आदेश क्या है? सूर्य। भगवान का आदेश हो तो हमारे नियम को बाजू में रख देना चाहिए। जैसे जो हमारे नियम है उनको साइड में रख दे। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई हम भगवान भले भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति करो और समस्त बाकी जितने भी धर्म है उनको त्याग दो, लेकिन हम कैसे कर सकते हैं? हमारी माँ का धर्म ये है, हमारे कुल का धर्म ये है, हम कैसे कर सकते हैं? वो आप ऐसे कर सकते हो क्योंकि वास्तव में हम धर्म का पालन क्यों कर रहे होते हैं? ताकि हमारा हित हो। और वास्तव में आपका हित कब होगा? जब आप भगवान की आदेश का पालन करो। तो जब द्रोणाचार्य का वध हो जाता है तो कौरवों की सेना बहुत ज्यादा विचलित हो जाती है। कर्ण, कृपाचार्य, अश्व सब बहुत ज्यादा विचलित हो जाते हैं। अश्वत्थामा बोलते क्या हुआ क्या हुआ? कर्ण, दुर्योधन ये सब चुप हो जाते हैं, समझ में नहीं आता अभी अश्वत्थामा को कैसे बताएं कि द्रोणाचार्य की इस तरह से हत्या हो गई है। फिर दुर्योधन कृपाचार्य को बोलते हैं कृपाचार्य आप बताइए। अश्वत्थामा को कृपाचार्य बताते हैं कि कैसे कैसे दृष्टद्युम्न ने आपके पिताजी को मार डाला। अश्वत्थामा ने जब ये सुना तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया। उसने बोला कि आप लोगों को विचलित होने की जरूरत नहीं है, भागने की जरूरत नहीं है, मेरे पास इतने इतने भयंकर अस्त्र हैं कि मैं अभी के अभी इन समस्त पांडवों को मार सकता हूँ, आप सिर्फ मेरे साथ आइए। तो उस समय कौरव की सेना अश्वत्थामा के साथ साथ रणभूमि में आई, शंख बजने लगे और युधिष्ठिर महाराज को पता था कि जरूर अश्वत्थामा आएंगे और वो समझ गए कि अश्वत्थामा ही आए हैं। तो अश्वत्थामा ने आते ही एक बड़ा ही भयंकर अस्त्र चलाया और वो अस्त्र था नारायण अस्त्र। उसमें से एक तीर में से करोड़ों करोड़ों की संख्या में तीर निकल रहे थे और उस जो अस्त्र था उसकी ये क्वालिटी थी कि जो भी उसका प्रतिकार करने के लिए दूसरा हथियार चला था तो उस अस्त्र जो नारायण अस्त्र था उसकी शक्ति और भी वृद्ध बहुत ज्यादा बढ़ जाती और भी बढ़ जाती। तो इस हथियार के कारण सब घायल होने लगे। तब भगवान ने देखा कि ये तो नारायण अस्त्र है और ये अस्त्र को कोई भी अस्त्र क्षमन नहीं कर सकता। तब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि क्योंकि हमने अपने गुरु का वध किया है तो उसी पाप के कारण हमें ये सजा मिल रही है और जोर से अपने समस्त सेनापतियों को कहा कि आप सब चले जाइए यहाँ से, हम युद्ध समाप्त कर रहे हैं और मैं वन में चला जाऊंगा। अब हम इस युद्ध को नहीं जीत सकते क्योंकि हमने इतना अपराध किया है जिसके कारण ये एक अस्त्र हम सबका वध कर देगा। तब कृष्ण ने कहा नहीं बड़े भैया, आपको डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये अश्वत्थामा ने जो अस्त्र चलाया है उसका नाम है नारायण अस्त्र, इसका कोई भी प्रतिकार नहीं कर सकता। उसके सामने आपका कोई भी हथियार नहीं चलेगा आप, लेकिन फिर भी इसको रोकने की एक रोका जा सकता है, एक तरीका है। आप सब इस नारायण अस्त्र के सामने दंडवत कीजिए। सब सो गए, सब दंडवत करके वहां पर जितने भी सेनापति थे, जितने सैनिक थे, सबको ये आदेश मिला कि आप सब दंडवत करो। जब भीमसेन वहां पर आया तभी कहने लगा, हे कायरो क्या कर रहे हो, यहाँ पर क्यों लेट रहे हो? अर्जुन ने देखा कि भीमसेन आ गया और अर्जुन मतलब वो भीमसेन को बोल रहे थे कि आप भी लेट जाओ, अब दंडवत प्रणाम करो, ये नारायण अस्त्र। लेकिन भीम किसी की बात सुन ही नहीं रहा था और प्रतिकार करने लगा उस नारायण अस्त्र का। नारायण अस्त्र और भी जितनी पावर थी, क्योंकि बाकी सब तो दंडवत कर रहे थे, तो जितनी पावर के साथ भीमसेन के साथ थे ना उसके ऊपर आक्रमण। लेकिन भीमसेन भी कोई साधारण योद्धा नहीं थे, इतना उनके पास बल था, वो प्रतिकार कर रहे थे। उनका पूरा शरीर जो है वो नारायण अस्त्र की अग्नि में झुलस रहा था। और फिर भगवान ने अर्जुन को कहा कि अगर आज ये इसी तरह से इस नारायण अस्त्र के सामने खड़ा रहा तो आज इसकी मृत्यु निश्चित है। अर्जुन ने वर्णास्त्र चलाया और भीम के ऊपर वर्षा करके उसके पूरे शरीर की अग्नि समाप्त की, लेकिन फिर भी नारायण अस्त्र तो था, तो फिर कृष्ण ने जाके जल्दी से उसका धनुष छीन लिया और खींच कर उसको नीचे लिटा दिया। और फिर अर्जुन ने जोर से कहा, बड़े भैया मंजिले भैया, ये तो नारायण अस्त्र है और इसके सामने प्रणाम करना कोई क्षत्रिय धर्म के विरुद्ध नहीं है। नारायण अस्त्र का प्रणाम, क्योंकि ये नारायण हमारे जो भगवान है उनका ही अस्त्र है, तो हमें अवश्य इनको दंडवत करना चाहिए। और जैसे ही सब दंडवत करने लगे तो नारायण अस्त्र चला जाता है, सब खड़े हो जाते हैं। तब दुर्योधन ने देखा, पहले जब सब लेट गए थे तब उनको ऐसा लग रहा था कौरवों की सेना को कि सब मर गए हैं। जब दुर्योधन देखा सब खड़े हो रहे हैं, तब अश्वत्थामा को बोला, अश्वत्थामा ये वापिस पुनः ये खड़े हो गए ना, आप वापिस से वही वाला अस्त्र चलाओ ताकि ये सब मरेंगे इसी अस्त्र से, क्योंकि वो आपका अस्त्र बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। अश्वत्थामा ने कहा, नहीं दुर्योधन, ये नारायण अस्त्र तो मैं जिंदगी में केवल एक ही बार चला सकता था, परंतु तुम फिक्र मत करो, मेरे पास दूसरे भी बहुत सारे अस्त्र हैं। और उस समय उन्होंने भार्गव अस्त्र चलाया, परंतु अर्जुन ने उस भार्गव अस्त्र का शमन कर दिया। और जब अश्वत्थामा के दो इतने बड़े अस्त्रों का शमन हो गया तो वो ज्यादा विचलित हो गया और जोर से चिल्लाने लगा, सब मोह माया है, सब मोह माया। तो वहां पर वेद व्यास जी भी आए और वेद व्यास जी को उन्होंने प्रणाम किया कि पता नहीं मेरे नारायण अस्त्र जो कि अचूक बाण है उससे इस सेना को कुछ भी नहीं हुआ था। वेद व्यास जी ने अश्वत्थामा को बताया कि जो सामने खड़ा है ना, जो कृष्ण है वो ही नारायण है, और उसके साथ जो बैठा हुआ है पीछे वो नर है, और नर और नारायण ऋषि यहाँ पर कृष्ण और अर्जुन के रूप में आए हैं, इन दोनों को कोई नहीं जीत सकता, नारायण अस्त्र नारायण का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जब अश्वत्थामा ने इतना सुना तो विचार किया कि फिर युद्ध करने का क्या फायदा। तब दुर्योधन के पास गया और कहा कि हमें संधि कर लेनी चाहिए क्योंकि हम पांडवों की सेना को नहीं हरा सकते। तब दुर्योधन ने कहा कि अब तो बहुत देर हो चुकी है, पहले तो ये पांडव अब मेरी बात नहीं मानेंगे, और दूसरी बात ये कि कितने सारे सेनापतियों का, मैंने अपने सारे भाइयों की मृत्यु हो गई, मेरे सबके प्राण का बदला मैं तभी दे सकता हूँ जब मैं अपने प्राण दूँ। अब तो युद्ध होगा अंत तक, कोई क्षमा नहीं, कोई संधि नहीं होगी। तो 18वें दिन शल्य जो है वो, जब भीमसेन और दुर्योधन का युद्ध हुआ था अंत में, तब कृपाचार्य कृतवर्मन और अश्वत्थामा वो इतना घायल हो गए थे, थोड़ा वो चले गए थे साइड में। और फिर भीमसेन और दुर्योधन का जब युद्ध हो गया था, उस समय युद्ध होने के बाद जब भीम ने दुर्योधन को जांग पे गदावार किया था, जो कि नहीं करना होता है युद्ध में, उसके ऊपर हम विषय चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन जब वो जब बाद में आया था अश्वत्थामा ने जब उनको देखा दुर्योधन को रोते हुए कर्राते हुए, तो उसको बहुत ज्यादा दुख हुआ कि दुर्योधन की ये दशा हुई है, और एक योद्धा के साथ उन्होंने पांडव ने ऐसा किया, बहुत ज्यादा दुखी हो गया था। तो उसने सोचा कि मैं बदला लूंगा, मैं आपके साथ जो ये हुआ है उसका बदला लूंगा। और उस समय क्योंकि दुर्योधन की दोनों जांघें टूट गई थी तो वो खड़ा नहीं हो सक रहा था, लेकिन उसी समय पानी मंगा कर जल के साथ उसका अभिषेक करवाया और उसे सेनापति युक्त करवाया अश्वत्थामा को। तो उस समय 18वें दिन की शाम, क्योंकि जैसे आप सब जानते हो युद्ध 18 दिन तक चला था, 18वें दिन की शाम तक आ गई थी, तो वो सोच रहे थे कि सुबह को हमें किस तरह से युद्ध करना है। लेकिन अश्वत्थामा को कृपाचार्य और कृतवर्मन ने कहा कि आज हम लोग विश्राम करते हैं, कल सुबह उठकर हम नए से युद्ध करेंगे, अभी हम बहुत थके हुए हैं। तो पेड़ के नीचे विश्राम कर रहे थे, अश्वत्थामा को नींद नहीं आ रही थी। वो जिस पेड़ के नीचे सो रहे थे वो बहुत ही बड़ा वट वृक्ष, पिपल का वृक्ष था, और सैकड़ों कौवों के घोंसले थे उसके ऊपर। वो सारे कौवे अपने अपने घोंसलों में सुकून से सो रहे थे, उसी समय बहुत बड़ा पक्षी वहां पर आया, जोर से प्रहार किया, सारे कौवों को मार डाला, कुछ को चोंच से, कुछ को नाखूनों से, सबको मारा। कुछ ही समय में वो सारे कौवे मरकर नीचे बिखर गए और वो जो बड़ा पक्षी था वो चला गया। ये देखकर अश्वत्थामा ने कहा हृदय में कि नियति का संकेत है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं दुर्योधन के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लूँ, मेरे पिता के साथ जो अन्याय हुआ है उसका बदला लूँ, और नियति मुझे ये सिखा रही है कि इस तरह से तुम्हें अन्याय का बदला लेना है। तो फिर उसी समय उसने कृतवर्मन और कृपाचार्य को जगाया और कहा उठो, तो अपनी योजना के विषय में बताया। दोनों ये सुनकर बहुत ज़्यादा लज्जित हुए और अश्वत्थामा को बोला तुम जो विचार कर रहे हो ऐसा विचार करना भी बहुत बहुत गलत है। तुम्हारी सारी कीर्ति, तुम महान योद्धा हो, ये कार्य करने से तुम्हारी सारी कीर्ति नष्ट हो जाएगी, तुम सो जाओ। तो तब है ना धृष्टद्युम्न ने कहा, सॉरी अश्वत्थामा ने कहा कि जिसके पिता की मृत्यु हो जाती है वो सुकून से नहीं सो सकता है, और तुम चाहे मेरे साथ आओ या ना आओ मैं तो अभी जा रहा हूँ, क्योंकि वो सब सोए हुए हैं, मैं उन सब की हत्या करूँगा और अपने पिता की हत्या का बदला लूँगा। तब कृपाचार्य अत्यंत ही सुंदर सीख देते हैं, हमें समझना चाहिए इस बात को। कृपाचार्य कहते हैं कि हे अश्वत्थामा, तुम ठीक तरह से विचार करो कि तुम क्या कर रहे हो। जिस तरह से एक स्वादिष्ट व्यंजन को खाने के लिए एक जीवित व्यक्ति और उसकी जिह्वा चाहिए होती है, मतलब व्यंजन कितना ही ज्यादा स्वादिष्ट हो पर लकड़ी का चम्मच उसका कभी भी स्वाद नहीं ले सकता, भले ही वो लकड़ी का चम्मच कितने ही टाइम तक उस स्वादिष्ट व्यंजन में पड़ा हो लेकिन वो कभी भी उस स्वाद का आनंद नहीं ले सकता। उसी तरह से इस जीवन में यश प्राप्त करके यदि आनंद प्राप्त करना है तो उसके लिए धर्म की आवश्यकता है। धर्म एक जीवित व्यक्ति के समान है और स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो यश और सुख की तरह है। अगर हम धर्म का त्याग कर देंगे तो सिर्फ जो व्यक्ति बचता है वो केवल एक लकड़ी के चम्मच के समान है। धर्म के बिना किसी को भी यश नहीं मिलेगा, ना ही कभी किसी को सुख मिल सकता है। अश्वत्थामा कुछ नहीं सुनता और समस्त पांडवों की सेना की हत्या करने के लिए आगे बढ़ता है। वहां पर जब वो आगे जा रहा होता है उनके शिविर में तो क्या देखता है कि उनके शिविर के बाहर बहुत ही विचित्र प्रकार का एक व्यक्ति खड़ा है। वो पहरा दे रहा था, उसने सिंह के जो सिंह की होती चमड़ी उसका वस्त्र धारण किया होता, हिरण की चमड़ी का वस्त्र धारण किया हुआ था और उसके गले में सांप लटक रहे थे। उसकी लाल लाल आंखें थी, बहुत ही भयानक व्यक्ति, विकराल स्वरूप का था। तब अश्वत्थामा ने देखा ये कौन है, उसने एक तीर मारा, वो तीर उस व्यक्ति के अंदर चला गया लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ। फिर बहुत सारे तीर उसको एक के बाद एक मारने लगा लेकिन वो तीर से उसको कुछ हो नहीं रहा था। फिर वो उसके आगे गया और गदा से प्रहार किया, वो गदा भी उसके अंदर ही चली गई, मतलब उसको कुछ हो ही नहीं रहा था, वो इतना भयानक और विकराल व्यक्ति। तब अश्वत्थामा ने सोचा शायद ये महादेव है और ये उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। तब महादेव को प्रणाम किया, उनकी बहुत स्तुति की और उन्हें बताया कि किस प्रकार से इन्होंने मेरे पिता की हत्या की है, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूँ। तब महादेव ने उनको अश्वत्थामा को बोला कि क्योंकि ये पांडव धर्म के साथ युद्ध कर रहे थे इसलिए मैं उनका साथ दे रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आपके द्वारा यहाँ पर अवश्य विनाश होगा। तब वो तलवार जो थी उनके महादेव के हाथ में थी वो उनको दे दी और अश्वत्थामा ने जैसे ही उस तलवार को स्पर्श किया उसकी शक्ति सैकड़ों गुना बढ़ गई, तो वो सीधा कौरों के पक्ष में गया, धृष्टद्युम्न के कमरे में सबसे पहले गया और धृष्टद्युम्न को जोर से लात मारकर उसका जबड़ा तोड़ दिया। धृष्टद्युम्न जब देखा कि कौन है, इतना अंधेरा था उस समय, रात बहुत गहरी रात थी और वो जब आंखें खोल के देख रहा था, पहचानने की कोशिश कर रहा था, तो उसने देखा ये दृष्टद्युम्न एक विकराल मृत्यु का रूप धारण करके यहाँ पर आया है। वो पागल हो गया है, उसकी शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बहुत ज्यादा क्रोध में है। तब दृष्टद्युम्न ने अश्वत्थामा को कहा, हे दृष्टद्युम्न, यदि तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो शस्त्र से मार डालो। तब अश्वत्थामा बड़े ही भयंकर स्वर में हंसता है और कहता है, गुरु का वध करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती। मैं तुम्हें एक योद्धा की तरह नहीं मारूंगा, मैं तुम्हें नरक से भी भयानक मौत दूंगा। और उसी तरह से पेड़ से लात मार मार के और घसीट घसीट के अश्वत्थामा ने उस दृष्टद्युम्न की हत्या कर दी। अश्वत्थामा अपनी तलवार लेकर अंधेरे में सैनिक, जितने भी सैनिक थे, हर एक जो भी टेंट लगे हुए थे ना खेमे, उनके अंदर जा रहा था। एक को मारता था, वो ऐसे आंखें खोल के जागता दूसरा उसकी आवाज सुनकर, तो उसको मारता। दूसरे सोच रहे पता नहीं क्या हो गया है। आपस में क्योंकि इतना अंधेरा था, अमावस्या की रात थी, तो कोई किसी को दिख नहीं रहा था, आपस में मर रहे थे। और एक एक करके सारे पांडवों के जितने भी सेनक और सेनापति थे सबका वध कर दिया उसने। और अंत में एक बहुत बड़ा शिविर था, बहुत ही सुंदर, जिसके अंदर पांच भाई जो कि पांडवों के पुत्र थे वो सो रहे थे। और वो वहां पर गया और एक एक करके सारे भाइयों का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब कृतवर्मन और कृपाचार्य वो अंदर शिविर में गए नहीं थे, लेकिन क्योंकि वो जानते थे कि क्योंकि अब हमारा ये अश्वत्थामा ही सेनापति है, तो वो जो निर्णय देगा तो हमें उसका साथ देना पड़ेगा। तो बाहर ही खड़े थे और जो भी सेनक या सेनापति बाहर निकलने के लिए कोशिश करता उनको वहां पर मार देते, भागने का जो भी प्रयास करता तो उसको मार देते। कुछ ही समय में सबकी मृत्यु हो गई, लाशों का ढेर लग गया। उस समय कृष्णा और पांच पांडव और सात्यकी ये सब बाहर सोए थे, क्योंकि उस समय युद्ध की एक ये भी नीति होती है कि जब युद्ध खत्म हो जाता है, एक पक्ष जीत जाता है, तो वो बाहर शिविर के बाहर सोते हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो अब हम युद्ध जीत गए हैं और अब हमें किसी का डर नहीं है, अभी कोई भी शत्रु पक्ष में आकर हमारा कोई भी अहित नहीं कर सकता, इससे बाहर सोते हैं। तो उस समय अश्वत्थामा जो पांचों पांडवों के जो भाई थे उनके जो पुत्र थे उनके सिर लेकर दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन को कहा कि भले ही हमारे सारे सेनापति और सारे सैनिक मारे गए, लेकिन अंत में विजय आपकी हो, ये लो सारे पांडवों के सर में तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। दुर्योधन ने जब ये सुना कि अश्वत्थामा सारे पांडवों के सिर लेकर आया तो बहुत ज्यादा प्रसन्न हुआ। उसको अपनी उस समय जो पीड़ा थी, वो जो पीड़ा में गड़ा रहा था, वो सारी पीड़ा भूल गया। और उस समय उसने सोचा मैं देखना चाहता हूँ, मरने से पहले मैं अपने शत्रु के कटे हुए सर को तो देख, बोला सबसे पहले मुझे भीमसेन का सर दो। अश्वत्थामा ने उसे सिर दिया और दुर्योधन उसको अपने हाथों से दबा रहा था, दबाया तो वो सर दब गया। उसने सोचा भीमसेन का सिर कैसे दब सकता है। फिर एक एक करके सारे पांडवों के सिर को जब उसने देखा तब उसे पता चला कि ये पांडवों के सिर नहीं है, बल्कि ये तो पांडवों के पुत्रों के सिर हैं। बहुत ज्यादा दुखी हो गया, बोला हे अश्वत्थामा तुमने ये कैसा घृणित कार्य किया, इससे तो सब लोग यही सोचेंगे कि दुर्योधन ने इसको इतना बच्चों की हत्या करने के लिए अश्वत्थामा को प्रेरित किया, तुमने मरते मरते भी मेरी इतनी संसार में इतना मुझे घृणित किया जाएगा, इतना बदनाम किया जाएगा तुम्हारे कारण। बहुत ज्यादा दुख हुआ, बोला हमारे सारे वंशजों की मृत्यु हो गई, मेरे सारे पुत्र मर गए, मेरे सारे भाई, मेरे भाइयों के पुत्र, अर्जुन का पुत्र सब मरे गए और अब ये पांच पुत्र जो थे उनको भी तुमने मार डाला। और इधर जब पांडव सुबह को उठे तो जाकर देखा कि पांचों पुत्रों की हत्या हो गई है, बहुत ज्यादा दुखी हो गए। युधिष्ठिर ने सहदेव को कहा तुम जाओ द्रौपदी को यहाँ ले आओ। लेकिन उसको कुछ बताना नहीं। तो द्रौपदी को लेकर आए। युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि ये जो जीत है ना, वो तो पराजय से भी अधिक दुखदायक है। द्रौपदी ने कहा कि जब तक अश्वत्थामा से बदला नहीं लोगी, तब तक मैं उपवास रखूंगी, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। अर्जुन ने कृष्ण को कहा कि चलो केशव, हम अश्वत्थामा को, मैं द्रौपदी को ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक अश्वत्थामा का सिर लेकर आऊंगा और ये अपने पुत्रों की अग्निदाह करने के बाद उस सिर की झुक्की बनाकर उसके ऊपर स्नान करेगी। अश्वत्थामा सोचता है कि ये जो मैंने अभी कार्य किया है, उसका संकेत मुझे नियति ने दिया है। नियति ने ही मेरा मार्गदर्शन किया है। नियति कभी भी सद्मार्ग, कभी जीव को सद्मार्ग के विषय में बताती है, तो कभी प्रलोभन देती है। यानी जो प्रकृति है वो ऐसा नहीं है कि वो सदैव आपको गाइडेंस दे रही होती है। हमें हमारी बुद्धि से ये विचार करना होता है कि क्या सही है क्या गलत है। केवल अपने पिता के मृत्यु का या हत्या का बदला लेने के लिए हजारों सैनिकों को सोते हुए मारना अत्यंत ही घृणास्पद कार्य था। दूसरों को सजा देना या सारे सैनिकों और सेनापतियों को मारना, इसके लिए दृष्टद्युम्न अश्वत्थामा के लिए उचित नहीं था। उसका क्रोध उचित था, क्योंकि उसके पिता की हत्या हुई थी। तो अगर वो खाली अपने पिता की हत्या की बदली में दृष्टद्युम्न को मारता, क्योंकि वो क्षत्रिय था, क्षत्रिय का खून में ऐसी, वो क्षत्रिय नहीं था, वो ब्राह्मण था, लेकिन क्योंकि कार्य क्षत्रिय जैसे कर रहा था, उसका स्वभाव क्षत्रिय जैसा था, तो भी वो ठीक होता कि वो दृष्टद्युम्न को मारता। लेकिन इसके साथ साथ हजारों लोगों की जान लेना अत्यंत ही घृणास्पद कार्य है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जो करना चाहते हैं, प्रकृति उसी कार्य को करने के लिए हमें सुविधाएं प्रदान करती है। अब देखो, अगर कोई अपराध करना चाहता है तो प्रकृति उसके लिए सुविधा प्रदान करती है। अगर कोई पुण्य करना चाहता है तो प्रकृति ऐसी कार्य के लिए उसको सुविधाएं प्रदान करती है। अब यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि महादेव ने अश्वत्थामा को तलवार क्यों दी? क्या महादेव की ये योजना थी कि अश्वत्थामा इसी तरह से घृणास्पद कार्य करके समस्त सैनिकों और सेनापतियों की हत्या कर दे? नहीं, हमें ये समझना चाहिए कि जब भी कोई कार्य होता है तो केवल कार्य करने वाले की नियति, भाग्य ही नहीं उसको प्रेरित करता होता है, बल्कि तीन चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो वो कार्य करने वाला व्यक्ति, दूसरा जिसकी ओर ये कार्य हो रहा है, और तीसरा भगवान। जैसे दो व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को मार डालता है, अब जिसकी मृत्यु हुई है उसकी मृत्यु अपने कर्मों के अनुसार ही हुई है। उसकी मृत्यु होनी थी इसीलिए हुई है, परंतु जो व्यक्ति मार रहा है उसको कोई अधिकार नहीं है किसी को मारने का। वो नियम का उल्लंघन कर रहा है। समझने का प्रयास करना है हमें कि किसी जीव को अपने कर्मों का फल कैसे मिलेगा, वो भगवान की योजना और प्रकृति पर निर्भर है। हमें ज्ञान मिला है, बुद्धि मिली है, शास्त्र मिले हैं, तो किसी को उसके कर्मों का फल देना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं कि सबको कर्मों का फल मिलना चाहिए और मैं दूंगा, तो मानवता नष्ट हो जाएगी। जैसे अगर कोई बालक रो रहा है और माता दूध पिलाने की बजाय ये सोचे कि ये तो अपने कर्मों के कारण ही रो रहा है, तो रोने दो उसको, कितनी बेरहमी, कितनी निष्ठुरता आ जाएगी जीवन में। जैसे अभी 2 साल पहले दिल्ली में एक मेडिकल स्टूडेंट का बहुत ही बेदर्दी से बलात्कार हो गया था, तो वहां पर किसी व्यक्ति ने ये सवाल पूछा कि यदि ये ऐसा कार्य किसी के साथ होता है तो क्या ये उसके पिछले जन्म के गुनाह का फल होता है? उसका उत्तर ये है कि यदि किसी के प्रति ऐसा कोई कार्य होता है या ऐसा कोई हादसा होता है, तो ये उसके कर्म का फल है या नहीं, ये देखना हमारी जिम्मेदारी नहीं है। जैसे जब सीता का अपहरण हो गया तब श्री राम ने ये तो नहीं कहा कि ये सीता के पिछले जन्मों के कारणों के कारण हुआ है। मतलब किसी के कर्म का क्या फल है क्या नहीं है वो देखना आज हमारा कर्तव्य नहीं है। पिछले जन्मों में उसके साथ क्या हुआ था उससे हमें कुछ लेना देना नहीं है। हमें देखना क्या है कि इस समय हमारी क्या जिम्मेदारी है। पत्नी की रक्षा करना पति का कर्तव्य है, संतान का पालन करना माता की जिम्मेदारी है, राज्य में उत्पात नाम अच्छे ये राजा का कर्तव्य है। जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ था उस समय पांडवों ने ये तो नहीं कहा कि हो सकता है द्रौपदी के कर्मों के कारण हुआ, सारे पांडवों ने उसकी जिम्मेदारी ली। यहाँ पर ये बात गौर से समझनी है कि यदि किसी व्यक्ति के जीवन में कोई अत्याचार होता है तो वो व्यक्ति अपनी तरफ से ये सोच सकता है कि अगर मुझे इतना बड़ा भयानक दंड मिला है तो अवश्य मैंने कोई पिछले जन्मों में ऐसे अपराध किए होंगे, ये मुझे मेरे कर्मों का फल ही मिला है, वो सब ठीक है। परंतु अगर सरकार या मानवता की दृष्टि से देखा जा रहा है तो वो जन्म के आधार पर हम किसी के अपराधों को नहीं देखना चाहिए कि पिछले जन्म में उसने क्या किया होगा, हो सकता है ये पिछले जन्म के अपराधों का फल उसे मिल रहा है। इस जन्म में अगर किसी पर अन्याय हो रहा है तो अन्याय का उसे अवश्य दंड देना चाहिए। कर्मों का फल जो गवर्नमेंट होती है या जो राजा होते हैं वो देते हैं, और कर्मों के जो उसूल बताए गए हैं शास्त्रों में वो इसलिए थोड़े बताए गए हैं कि ऐसा हुआ तो ऐसा क्यों हुआ। जैसे अगर कोई ज्यादा खा लेता है तो उसका पेट बिगड़ जाता है, तो क्वेश्चन ऐसा कोई पूछे कि भाई पिछले जन्म के अपराध के कारण इसका पेट बिगड़ गया है, ऐसा थोड़े। मतलब अगर किसी के साथ कुछ हुआ है तो वो क्यों हुआ है, किस कारण हुआ है, अगर हम उसको ढूंढने जाएंगे तो कभी भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि भगवान साक्षात भगवद गीता में बताते हैं गहना कर्मणो गति। कर्मणों को समझना बहुत ही मुश्किल है। तो ये कर्मों के उसूल शास्त्र में बताए क्यों जाते हैं, इसलिए बताए जाते हैं कि अगर हम गलत कार्य करेंगे तो उसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसीलिए मुझे ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो क्या कार्य करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, किस कार्य का क्या फल है, ये समझने के लिए कर्म का नियम है। और जब कोई परिस्थिति आए तो हमें ये सोचना चाहिए कि इस समय मेरा क्या कर्तव्य है। अगर भगवान को पांडव के पुत्रों की और समस्त सैनिकों की, समस्त सेनापतियों की हत्या यहाँ पर वध करना था, इस जैसे भगवान ने पहले ही कह दिया था अर्जुन को कि तुम्हारे 5 पांडवों के अतिरिक्त और कोई भी यहाँ पर जीवित नहीं बचेगा, तब ये भगवान ने भले कह दिया था तो ये भगवान की अपनी जिम्मेदारी थी, अश्वत्थामा की जिम्मेदारी नहीं थी कि समस्त पांडवों के पुत्रों को और समस्त सैनिक को जो बची हुई एक अक्षवाणी सेना थी उसकी हत्या कर दे। महादेव विनाश के देवता हैं, उनका कर्तव्य है विनाश करवाना, वो किसी भी दरवाजे करा देते। अश्वत्थामा ने इच्छा की कि मुझे इनको मारना है तो भगवान ने उनको निमित्त बना दिया। तो ये जिम्मेदारी उसकी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने अपनी इच्छा से इस जिम्मेदारी को स्वीकार किया। व्यक्ति जिसको अपने कर्मों का फल मिलता है और वो व्यक्ति जो कार्य कर रहा है और भगवान, ये तीन मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं किसी भी कार्य का। लेकिन भगवान तो किसी भी व्यक्ति से अपराध नहीं करवाना चाहते। मतलब भगवान यदि चाहे तो स्वयं ही समस्त जीवों को उनके अपराधों का फल दे सकते हैं, परंतु जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी नफरत और अपनी स्वार्थ के कारण किसी को हानि पहुंचाना चाहता है या वो किसी तरह से कोई अत्याचार करता है तो वो स्वयं जिम्मेदार होता है। प्रकृति हमारी इच्छा के अनुसार हमें कार्य करने की सुविधा और प्रलोभन देती है। अश्वत्थामा का क्रोध उचित था, पर उसकी बदले में हजारों को मारना बिल्कुल अनुचित था। इसका अर्थ है कि किसी को सजा देना भी एक प्रकार का न्याय है, पर वो सजा उचित मात्रा में होनी चाहिए। जैसे अगर कोई बालक कोई नादानी करता है, कोई ऐसी गलती करता है, तो माता पिता का अधिकार है उसको पनिशमेंट देने का, परंतु वो पनिशमेंट बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं होनी चाहिए और ना ही इतनी कम कि वो बच्चा बार बार वो गलती करे। मतलब उचित मात्रा में दंड देना आवश्यक है, वरना बहुत हानि हो सकती है। तो अर्जुन और कृष्ण अश्वत्थामा को मारने के लिए उसके पीछे गए। अश्वत्थामा ने बहुत ही भय के कारण ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, उस ब्रह्मास्त्र का जिसका शमन करना उसे आता ही नहीं था। बहुत ही भयानक अग्नि चारों ओर से, सारे लोग व्याकुल हो गए। और उस समय भगवान ने अर्जुन को कहा कि इस ब्रह्मास्त्र का शमन करने के लिए केवल ब्रह्मास्त्र का ही उपयोग करना पड़ेगा तुम्हें। और जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया अर्जुन ने, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब संकेत दिया कि इन दोनों ब्रह्मास्त्र को आप शमन कर दो। और उस समय शमन करने के बाद अश्वत्थामा को पकड़ लिया और कैद करके, उसको मारा नहीं और कैद करके द्रौपदी के सामने लाया गया। द्रौपदी के सामने लाया जब, तो द्रौपदी ने उसे देखते ही कहा, मुच्यताम मुच्यताम एषाम, इसे छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि द्रौपदी के मन में जो इतनी दया आज अश्वत्थामा के लिए उत्पन्न हो रही थी, वो उस समय कब कहाँ गई थी जब इतना भयंकर युद्ध हो रहा था। यदि वो उस समय इस दया का प्रदर्शन करती थी तो इतना बड़ा भयंकर युद्ध नहीं होता, इतने लोग की हत्या नहीं होती। तो इसका उत्तर स्पष्ट है कि अश्वत्थामा कोई राजा नहीं था। अगर वो मारा नहीं जाता तो समाज में कोई उपद्रव नहीं आता। कौरवों की राज्यसभा में, जिस राज्यसभा में उस राज्य की कुलवधु का इतना भयंकर अपमान हुआ था, इतने वरिष्ठ व्यक्तियों के सामने उस कुलवधु को निर्वस्त्र करने का प्रयास किया गया था, उसके साथ इतना अत्याचार हुआ था, जंगा पीटकर उसको एक देवर ने अपने भाभी जो कि माँ के समान होती है उसको वहां पर बिठाने के लिए कहा था और उसको वेश्या कहा गया था। यदि एक राज्य में अपनी कुलवधु के साथ इतना बड़ा अत्याचार हो सकता है तो भला साधारण व्यक्तियों की, साधारण महिलाओं की, स्त्रियों की क्या क्या सम्मान करेंगे। तो इस तरह से धर्म का बहुत बहुत अत्याचार होने वाला था। तो यहाँ पर दया दिखाना कोई उचित नहीं था। वास्तव में दया और न्याय दोनों आवश्यक है। हमें देखना होता है स्थिति के अनुसार कि कहाँ हमें दया दिखानी है और कहाँ न्याय करना है। परंतु भगवान के आदेशानुसार अर्जुन ने अश्वत्थामा के बाल काट दिए अलग अलग जगह से, बहुत ही बुरे तरीके से, तलवार से, और उसके मस्तक से मणि निकाल दी। अश्वत्थामा को अपने अपमान से बहुत ज्यादा क्रोध आया, और भी पहले से क्रोध में था और अधिक क्रोध आया, तो उसने सोचा ब्रह्मास्त्र से मैं इस पांडवों की वंशज का आखिरी निशान जो है, नामो निशानी मिटा दूंगा। और उसने उस ब्रह्मास्त्र को उत्तरा के गर्भ की ओर बढ़ा दिया। और जब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में जाकर परीक्षित महाराज की रक्षा की, और उस समय भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को ये शाप दिया कि तुमने इतने सारे मानवों की हत्या की है, इसलिए तुमको मानव समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि 3000 साल तक तुम जंगलों में भटकते रहोगे, किसी भी मानव के साथ तुम्हारा कोई संपर्क नहीं होगा और तुम्हारी मृत्यु भी नहीं होगी। इसी तरह से तुम्हारी ये जो मणि है, जहाँ से निकली है वहां से खून निकलता रहेगा, रस्सा निकलता रहेगा, नासूर बन जाएगा, और इसी तरह से तुम्हें इस अपने अपराधों को पूरे कई हजारों साल तक भुगतना पड़ेगा। तो यहाँ पर यह प्रश्न भी सॉल्व हो रहा है कि भले अगर किसी को ऐसा लगता है कि भाई हत्या का दंड हत्या होता है, अगर एक बंदे की हत्या की जाती है तो उसको एक मृत्यु दंड मिलता है, तो फिर अगर कोई हजार लोगों की मृत्यु करता है या हत्या करता है तो उसको कैसा दंड मिलेगा? क्या एक ही कानून की एक सजा से ही उसको उसकी सारे कर्म, जितने भी अपराध किए हैं वो नष्ट हो गए? वास्तव में भक्तों, ये भी केवल भगवान के ऊपर है। भगवान, अब देखो हम हमारे संसार में हम देखें, अगर चलो ठीक है उसको दूसरा जन्म मिल जाता है, संसार में मिलता है, तो इस संसार में देखो कोई अंधे हैं, कोई बहरे हैं, कोई कितने किसी को पैरालाइज होता है, कोई कितने घृणित जीवन गुजार रहे होते हैं, कोई जंगलों में, कोई पैदा होते ही जिसकी किसी की टांगे इतनी छोटी होती हैं, किसी के हाथ नहीं होते हैं, किसी का कैसा शरीर होता है। तो भगवान नियति जो है वो अपने हिसाब से सबको अपराध का दंड दे रही होती है, कानून जो सजा दे रहा होता है उससे वाकई में उसकी सजा जो है, जो उसको आगे जाकर जैसे शास्त्र कहता है कि अगर कानून की किसी को सजा मिल जाती है, उचित सजा मिल जाती है, तो फिर उसको स्वर्ग में जाना, नरक में नहीं जाना पड़ता। लेकिन अगर कानून, तो जाहिर सी बात है एक बार ही मार सकता है ना किसी को, बार बार तो नहीं मार सकता, तो उसके इसीलिए तो नरक और स्वर्ग है। तो अगर तो दूसरे दूसरे जन्म भी हैं अलग अलग तरीके से, किसी को जानवर बना दिया जाता है, किसी को कीड़ा बना दिया जाता है, किसी को क्या बना दिया जाता है। हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार पूरा पूरा भगवान उनके साथ न्याय करते हैं। लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी नहीं है कि हम इनके विषय में सोचें, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हमें जो भगवान ने इतना सुंदर मनुष्य जन्म दिया है, फिजिकली फाइनेंशियली मेंटली एकदम परफेक्ट जीवन दिया है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम स्वयं भी भगवान की भक्ति करें और अन्य प्राणियों को भी ये बताएं कि यदि आप अपने इस मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहते हो तो केवल एक ही कार्य करो, भगवान की पवित्र कथाओं का श्रवण करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, इसी से आप अपने जीवन को सफल कर सकते हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे की कथा हम कल से स्टार्ट करेंगे। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए अवश्य प्रार्थना कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे तरीके से कर सकूं।